नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार। आज इतिहास नवम पेपर के अंतर्गत टर्की में सुधार के प्रयास और उसके अंतर्गत तंजीमात सुधार नामक अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। टर्की में सुधार के प्रयास। पतनोन्मुख ऑटोमन साम्राज्य को गर्त गहवर से बचाने के लिए अनेक प्रयास किए, परंतु इसमें सफलता नहीं मिल सकी। सर्वप्रथम सलीम तृतीय 1789 से 1808 ईस्वी ने सेना के संगठन हेतु फ्रांस, ब्रिटेन, प्रसा तथा स्वीडन से विशेषज्ञों को आमंत्रित किया तथा सारे टर्की में सुधार की योजना बनाई, जिसे नया समाज निजामे सदीद कायम हो सके। परंतु टर्की के मुल्लाओं, जानिसारियों एवं अन्य प्रतिक्रियावादियों ने उसका विरोध किया तथा विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह सफल रहा और सुल्तान और सुल्तान को गद्दी त्यागनी पड़ी। नए सुल्तान मोहम्मद द्वितीय 1808 से 1832 ईस्वी ने भी सुधार में जानिसारियों को सुधार की असफलता के लिए दोषी ठहराया और जून 1826 ईस्वी में जानिसारियों को कत्ल कर दिया तथा नया फौज के संगठन के लिए प्रशा की सहायता ली। इसके अतिरिक्त इसने सैनिक एवं चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया, जिससे देश में धर्मनिरपेक्षता का विकास हो सके। परंतु वह समय से बहुत आगे था और उसकी सेना का पुनर्संगठन शीघ्रता से नहीं हो सका। फलतः रूस के साथ इसी काल में अंक्यार स्केलेसी की संधि 1833 ईस्वी हुई, जिससे टर्की रूस के सैनिक संरक्षण में आ गया। इसके बाद मिस्र के सूबेदार मुहम्मद अली ने आक्रमण किया और टर्की की निर्बलता का पर्दाफाश कर दिया। सुधारों का भी प्रांतों में स्वागत नहीं हुआ। इस प्रकार मुहम्मद के भी सुधार संबंधी प्रयास असफल ही रहे। परंतु उसके उत्तराधिकारी अब्दुल मजीद 1839 से 61 ईस्वी के बीच एवं अब्दुल अजीज 1861 से 76 ईस्वी के बीच सुधारों का क्रम जारी रहा। इस काल में अनेक सुधारों की घोषणा की गई तथा इन्हें तंजीमात के नाम से पुकारा जाता है। तंजीमात सुधार 1839 से 1876 ईस्वी के बीच। अब्दुल मजीद जब तख्त पर बैठा तो वह मात्र 16 साल का था। इस समय टर्की में उसके पूर्व सुल्तानों द्वारा किए गए सुधारों की असफलता प्रकट हो चुकी थी। धीरे धीरे टर्की एक रुग्ण साम्राज्य बनता जा रहा था। देश में मुल्लाओं की सुधार विरोधी नीति के कारण प्रगतिशील सुधारों का कार्यान्वयन मुश्किल था। साम्राज्य के अंतर्गत अनेक जातियों का निवास था तथा यूरोप में साम्राज्य सिकुड़ता जा रहा था। एशिया एवं अफ्रीका में भी राष्ट्रीयता के आंदोलन इसे खोखला बना रहे थे। मुस्लिम समाज में मिल्लत व्यवस्था के कारण अलग अलग प्रशासनिक इकाइयां बन गई थी, जो कि स्वायत्तता पर आधारित थी। परंतु इसके पहले के सुल्तानों ने सुधारों का जो कार्यक्रम चलाया था, उसके कारण साम्राज्य में परिवर्तन का वातावरण बन चुका था। शासन संगठन में परिवर्तन आ चुका था एवं सेना के पुनर्गठन के लिए कदम उठाए जा चुके थे। अतः नए सुल्तान के राज्यारोहण के पश्चात एक नवनिर्माण आंदोलन एवं सुधारों का क्रम आरंभ हुआ, जिसे तंजीमात कहते हैं। इसके प्रणेता मोहम्मद रशीद पाशा तथा उसके पश्चात मिद्दत पाशा नाम के दो तुर्क राजनीतिज्ञ थे। इन सुधारों का कार्यक्रम 1839 से 1876 तक चलता रहा। राज्यारोहण के साथ ही सुल्तान मजीद ने 1839 ईस्वी में अधिकारों के पत्र अथवा गुलहाने का हती शरीफ की घोषणा की और इसके द्वारा सेना, प्रशासन, न्याय शासन तथा शिक्षा में अनेक सुधार लाए एवं अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए गए। इस कार्य में लंदन स्थित तुर्क राजदूत मोहम्मद रशीद ने प्रमुख भूमिका निभाई। गुलहाने का हत्ती शरीफ 1839 ईस्वी। नए सुधारों के कार्यक्रम में कानून व्यवस्था में आमूल परिवर्तन लाया गया। तुर्क कानून में नागरिकों में सभ्यता नहीं थी तथा मुस्लिमों एवं गैर मुस्लिमों के लिए कानून में भेदभाव था। अतः गुलहाने के अनुसार यह घोषणा की गई कि तुर्क सुल्तान की प्रजा की संपत्ति, जीवन और अधिकारों की रक्षा बिना भेदभाव से की जाएगी। अतः कानून की नज़र में समता भाव लाने के लिए फ्रांसीसी कोड की नकल पर फौजदारी, दीवानी तथा वाणिज्य कानून बनाए गए और श्रेणीबद्ध अदालतों का संगठन किया गया, जिसमें प्राथमिक अदालत से उच्च अदालत तक न्याय एवं अपील की व्यवस्था की गई। मुसलमानों के शादी, तलाक आदि से संबंधित मुकदमों के लिए कुरान के सिद्धांतों पर आधारित शरीयत अदालत भी स्थापित किए गए, जिसमें मुसलमान न्यायाधीश रखे गए, परंतु निजामी अदालत में अन्य मुकदमों के न्याय की व्यवस्था की गई, जिसमें सभी धर्मावलंबी न्यायाधीश हो सकते थे। न्याय शासन के लिए फ्रेंच प्रणाली अपनाई गई। इसी के साथ कर तथा मालगुजारी व्यवस्था में भी सुधार किया गया। इसमें ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दी गई और सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से कर वसूली का काम अपने हाथ में ले लिया। इसके लिए निश्चित कानून बनाए गए, जो कि सभी के ऊपर बिना भेदभाव के लागू किए गए। इसके साथ ही सेना में भी सुधार लाया गया और एक सैनिक परिषद की स्थापना कर सैनिकों की भर्ती एवं प्रशिक्षण तथा सैनिक सेवाओं को नियमित किया गया। सेना भर्ती भी बिना भेदभाव के कारण तय हुआ। इस तरह सुधारों के प्रथम चरण में टर्की के सभी निवासियों के बीच समानता की स्थापना तथा समान सुविधाओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया। परंतु समाज में मुल्लाओं एवं प्रभावशाली मुस्लिम सामंतों को यह सुधार बहुत अखड़ा तथा सेनापति रिजा पाशा ने इसका विरोध किया। उसने सेना में मुसलमानों को ही भर्ती करना जारी तथा यहूदियों, ईसाइयों आदि को इससे वंचित रखा। कर वसूली की नई प्रथा का भी विरोध हुआ। अतः 1841 ईस्वी में मोहम्मद रशीद पाशा को हटना पड़ा। परंतु सुल्तान मजीद साम्राज्य पर पतन के बढ़ते साये को देख रहा था, अतः उसने रशीद पाशा को पुनः बुलाया और 1846 ईस्वी में उसे प्रधानमंत्री बना दिया। इस बकर इसने सुधारों का एक नया कार्यक्रम बनाया तथा शैक्षणिक सुधारों पर विशेष जोर दिया। 1846 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तथा इसमें पाश्चात्य विद्वान, चिकित्सा, कृषि आदि की उच्च शिक्षा का प्रबंध किया गया। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा में भी सुधार लाए गए और राज्य की ओर से निःशुल्क शिक्षा देने के लिए 1851 ईस्वी में 6 विद्यालय खोले गए। इसके साथ प्रांतीय शासन में भी सुधार लाया गया तथा प्रांतीय सूबेदारों को परामर्श देने के लिए प्रत्येक प्रांत में एक निर्वाचित सभा की व्यवस्था की गई, जिसके कारण उनकी निरंकुशता समाप्त हो गई। प्रांतीय न्यायालयों में नए कानून लागू किए गए, जो कि धर्म निरपेक्षता पर आधारित थे, तथा सूबेदारों को प्राणदंड देने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। इस तरह तुर्की में सुधारों द्वारा नव जीवन ढालने का प्रयास किया गया। धीरे धीरे जनता में इन सुधारों का स्वागत हुआ। इस काल में तुर्की में सुधारों की प्रेरणा देने में ब्रिटेन का भी प्रमुख हाथ था, जो कि इस क्षेत्र में रूस के प्रभाव वृद्धि से चिंतित तथा तुर्की की स्वतंत्रता बनाए रखने को इच्छुक था। 1856 ईस्वी में क्रीमिया युद्ध में रूस की पराजय के पश्चात सुल्तान ने पुनः एक नई घोषणा की, जिसे हत्ती हुमायूं कहा जाता है। हत्ती हुमायूं 1856 ईस्वी। 18 फरवरी 1856 ईस्वी को सुल्तान ने तंजीमात की कड़ी में एक नया घोषणा पत्र जारी किया, जिसे हत्ती हुमायूं कहा जाता है। इसके द्वारा गुलहाने सुधारों को और भी अधिक व्यापक रूप देने की योजना बनाई गई। इसके द्वारा एक नया दंड विधान बनाया गया, जो कि सब पर समान रूप से लागू किया गया। सैनिक सेवा का काल निश्चित कर दिया गया एवं सेवा शर्तें प्रकाशित कर दी गई। एक सरकारी बैंक का भी संगठन किया गया, जिसे मुद्रा नियंत्रण का कार्यभार दिया गया। सुल्तान को परामर्श देने के लिए एक परिषद की भी व्यवस्था की गई और पुराने सुधारों के कार्यान्वयन में नई गति दी गई। सुल्तान अब्दुल अजीज और तंजीमात 1861 से 1876 के बीच। अब्दुल मजीद एक सुधारक सुल्तान सिद्ध हुआ और उसकी मौत के पश्चात 1861 ईस्वी में उसके भाई अब्दुल अजीज ने तख्त शीन होने के बाद तंजीमात सुधारों का कार्यक्रम जारी रखा। उसने हत्ती हुमायूं का विस्तार किया तथा इसके अंतर्गत कई सामाजिक सुधार लाए। ईसाइयों को अब वे सारी सुविधाएं प्राप्त हो गई जो कि पहले सिर्फ मुसलमानों को प्राप्त थी। इसके साथ ही मिल्लत के प्रधानों को वेतन देना आरंभ किया, जिससे उन्हें धार्मिक चंदा या कर वसूलने से छुटकारा मिल गया तथा मिल्लतों पर सरकारी नियंत्रण की वृद्धि हुई। मिल्लतों के धन एवं जमीन के सही उपयोग के लिए समितियों का संगठन कर दिया गया, जो कि उनका संचालन तथा देखरेख करने लगे। इन सुधारों द्वारा धार्मिक भेदभाव एवं सामाजिक असंतुलन दूर करने का प्रयास किया गया। कानून को धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया तथा लोगों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। सेना में सेवा, न्यायालय में न्याय, कर भुगतान, संपत्ति की खरीद बिक्री आदि में सभी धर्म वालों को समान अधिकार प्राप्त हुआ। पुलिस व्यवस्था को भी पुनर्संगठित किया गया और जेल प्रशासन में भी सुधार लाया गया। अर्थव्यवस्था। कर वसूली में ठेकेदारी प्रथा पहले ही समाप्त कर दी गई थी तथा एक बैंक की स्थापना द्वारा मुद्रा नियंत्रित कर दी गई थी। अब सरकार ने वार्षिक बजट बनाना आरंभ किया, जिसमें कि आय व्यय को संतुलित किया जा सके। मुद्रा में भी सुधार लाया गया तथा चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया गया। देश के आंतरिक विकास में सरकारी व्यय का भी बंदोबस्त किया गया तथा सड़क, नहर, अस्पताल, विद्यालय आदि सरकार की ओर से खोले गए। इसके लिए सरकार में एक सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त कृषि एवं व्यापार में भी नई नई सुविधाएं दी गई। तंजीमात सुधारों की विफलता। तंजीमात सुधार मरणासन्न तुर्क साम्राज्य को नवजीवन देने का प्रयास था। रूस की गिद्ध दृष्टि तुर्क साम्राज्य पर थी और टर्की की निर्बलता जगजाहिर हो चुकी थी। ऐसी अवस्था में ब्रिटेन तथा उसके राजनीतिज्ञ टर्की को पुनर्संगठित कर इसे रूस का ग्रास होने से बचाना चाहते थे। आरंभ में ब्रिटिश राजदूत सर स्टेटफोर्ड कैनिंग ने सुधारों की घोषणा पर काफी जोर दिया था तथा रशीद पाशा को उत्साहित किया था, परंतु टर्की में रूढ़िवादी तथा निहित स्वार्थों का ऐसा जाल था कि सुधार कागज पर ही रह गए। इस समय सारे यूरोप में राष्ट्रीयता की लहर व्याप्त थी तथा इसकी आंच पश्चिम एशिया को भी लग रही थी। अतः इन सुधारों ने जो आशा जगाई, उससे गैर तुर्क जातियों में राष्ट्रीयता की भावनाएं बढ़ी और उन्होंने अपनी स्वायत्तता के आंदोलन को बढ़ाने पर ही अधिक जोर दिया। इस तरह जिन लोगों को लाभ होता था, वे भी सुधारों के प्रति उदासीन थे, जबकि मुल्ला एवं तुर्क मुसलमान अपने विशेष अधिकारों के हनन को सहने के लिए तैयार नहीं थे। इसके साथ ही साम्राज्य की विशालता एवं विविधता ने भी इस कार्य को कठिन बना दिया। विभिन्न जातियों में एकता का अभाव था तथा आधुनिक शिक्षा का विकास नहीं हो पाया था। अतः वे सुधार की गरिमा को नहीं समझ सके। जिन अधिकारियों को दूरस्थ क्षेत्रों में सुधार के कार्यान्वयन का भार सौंपा गया वे भी प्रायः उदासीन थे और मुस्तैदी से इसे लागू नहीं कर सके। सुधारों में पाश्चात्य देशों के नमूने पर ही अधिक जोर दिया गया, जो कि तुर्क साम्राज्य के पिछड़े बाशिंदों के लिए एक अचंभे की चीज थी। अतः तुर्क साम्राज्य की अव्यवस्था एवं निवासियों की हालत को देखकर उनकी परंपरा के अनुसार परिवर्तन नहीं लाया गया। परंतु इन सभी कारणों में सुल्तान मजीद की व्यक्तिगत कमजोरी एवं तत्पश्चात तुर्की का आर्थिक दिवालियापन भी सुधारों की विफलता का एक बड़ा कारण था। 1875 ईस्वी तक तुर्की पर करीब $1 अरब कर्ज हो गया। इससे सुधारों को गंभीर क्षति पहुंची और तुर्की की दशा सुधरने के बदले यह पतन के गर्त में गिर गया। तंजीमात सुधारों का महत्व। तंजीमात सुधारों को कागजी सुधार का नाम दिया जाता है तथा इसके द्वारा तुर्की में अपेक्षित परिवर्तन नहीं आ सका। कतिपय पाश्चात्य प्रशिक्षित राजनीतिज्ञों ने पाश्चात्य देशों को खुश करने एवं कर्ज हासिल करने के लिए सुधारों का ढिढोरा पीटा तथा उसे ठीक से लागू नहीं कर सके। इसके द्वारा सिर्फ तुर्की से अवसान को कुछ दिनों के लिए सिर्फ टाला जा सका और समाज की गहराइयों तक इन सुधारों का प्रवेश नहीं हो सका। इन सुधारों के कुछ ही दिनों के बाद सुल्तान अब्दुल हमीद की स्वेच्छाचारी शासन ने इसका खोखलापन भी प्रकट कर दिया। परंतु सैद्धांतिक दृष्टि से इन सुधारों की मान्यता ने भावी तुर्की को काफी प्रभावित किया। कानून संग्रह, न्याय व्यवस्था, जनतांत्रिक परिषद, बजट, विश्वविद्यालय आदि ने तुर्की में एक नवचेतना कायम किया, जिससे मध्ययुग की जंजीरों से तुर्की को मुक्त कर दिया गया। इससे तुर्की के एक वर्ग में नवचेतना कायम हुई और इसी वर्ग ने 1908 ईस्वी में युवा तुर्क आंदोलन का नेतृत्व किया। अतः तंजीमात अपने प्रत्यक्ष उद्देश्य में असफल रहा, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से इसने तुर्की में आधुनिक युग की बुनियाद डाली, जो कि तरुण तुर्क क्रांति के बाद नए रूप में प्रस्फुटित हुआ। सुल्तान अब्दुल अजीज का विस्थापन। 1876 ईस्वी। तंजीमात की असफलता एवं बढ़ते जनरोस का परिणाम यह निकला कि 30 मई 1876 ईस्वी को उसे पदच्युत कर दिया गया तथा उसका भतीजा मुराद पंचम भी 3 महीने के लिए सुल्तान रहा। अंततः सुल्तान अब्दुल हमीद 1876 से 1909 31 अगस्त को गद्दी पर आसीन हुआ तथा तुर्की के इतिहास का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। इसके साथ ही यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।